रीतिकाल नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत यानी 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उसके नाम है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के लिए जो नाम दिए गए हैं वह इस प्रकार है। अलंकृत काल, यह नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। श्रृंगार काल, यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीतिकाल, यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मिश्र बंधुओं का तर्क यह है कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। किंतु इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई तथा अलंकृत काल कहने से इस प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता, अतः यह नाम समीचीन नहीं है। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में तर्क दिया गया कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की है, किंतु श्रृंगारी कवियों ने काव्यांग निरूपण की रुचि दिखाई है। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल के संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी और कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेता था जैसा भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरे को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता है, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका में का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया, अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया था। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति शैली और काव्यांग निरूपण से है। रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल का वर्गीकरण रीति के आधार पर बनाकर इस प्रकार किया जा सकता है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। पाला, रीतिबद्ध, इस वर्ग में वो कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात इन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले उन कवियों प्रमुख हैं चिंतामणि, मतिराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, श्रुति मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हा, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह ग्वाल आदि। दूसरा, रीतिमुक्त, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त होते हैं। इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथ लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की। इन कवियों में प्रमुख है घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तीसरा, रीति सिद्धि, तीसरे वर्ग में वे कवि थे जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिए किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी, वे रीति के में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। उनके एकमात्र ग्रंथ बिहारी स्वयं में रीति की जानकारी का पूरा पूरा उपयोग कवियों ने किया है। अनेक प्रकार के नायिकाओं का समावेश तथा विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर भी उनके दोहे खरे उतरते हैं। जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी तब तक वह बिहारी सत्साई के अनेक दोहों का अर्थ हृदयगम नहीं कर सकता। रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य। यहाँ रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। रचयिता, रचनाएं, चिंतामणि, कविकल्प, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास, छंद विचार, भूषण, शिवराज भूषण, छत्रशाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंद हृदय प्रकाश, मतिराम, ललित लाम, मतिराम सत्सई, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, बिहारी सत्सई, जसवंत सिंह, भाषाभूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांतानुसार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, स्फुट छंद, कुलपति मिश्र, रसरहस्य, नक्षिक, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी, संगामसार, आलम, आलम केरी, देव, भाविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेमचंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास, गोप, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार, घनानंद, पदावली, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास पावस, कृपाकंद निबंध, यमुनाशय, प्रकीर्ण छंद, रसलीन, अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद, भिखारी दास, काव्य निर्णय, काव्य श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदारणव, कृष्ण कवि, अलंकार कलानिधि, गोविंद विलास, बोधा, वीरहावारिश, इश्कनामा, पद्माकर, जगद्विनोद, पद्माभरण, गंगालहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, प्रताप सिंह, वृदावली, स्फुट छंद, प्रताप साही, व्यंग्याथक कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि, ग्वाल, रसकानंद, यमुना लहरी, रसरंग, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, खूब जो अष्टक अलंकार ब्रह्म भंजन रसरूप दृक्षतक कवि दर्पण द्विजदेव श्रृंगार लतिका श्रृंगार बतीसी कवि कल्पद्रुम श्रृंगार चालीसा रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास। आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विवाह की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल के अंतर्गत आते हैं, किंतु केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रम में रहते थे। केशव के अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर नहीं मानते। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिंदुन विराजयी कविता वनितावित। आचार्य केशवदास के लिखे 9 ग्रंथों के नाम इस प्रकार। रचना का नाम रचनाकाल रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावणी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1607 ईस्वी, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी, नक्षिक और छंदमाल। इसमें रसिक प्रिया कवि प्रिया छंदमाल रीति परक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में से श्रृंगार चर्चा तथा शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों वृत्तियों का आवेदोषों का विवेचन है। कवि प्रिया कृष्ण केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्र सिंह की राजनृत्य की राय प्रवीण को काव्य दीक्षा देने के उद्देश्य की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति काव्य दोष आदि का विशद विवेचन है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इस ग्रंथ में है। भूषण भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रम में रहने वाले ऐश्वर्यतिकालीन कवि है जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने उन्हें भूषण की उपाधि दी थी और वे इस नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि उनका वास्तविक नाम ही किसी को नहीं पता। इनका जन्मकाल 1613 ईस्वी माना गया है। भूषण के विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। भूषण ने जिन दो नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के रक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराजा शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे। अतः उनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियाँ रीतिकाल के अन्य कवियों जैसे झूठी खुशामदी नहीं थे अपितु भूषण के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदू वीरों को जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण ने सुराज भूषण और शिवा भवानी की रचना महाराजा शिवाजी के आश्रम में रहकर के शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ जिसमें से 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृतचंद्रलोक के आधार पर दिए गए। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित सवैये में, उदाहरण कहीं कहीं लक्षण के अनुरूप नहीं है। छत्रसाल दशक में महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन तो शिवा भावनी में शिवजी का बखान है। अब तक भूषण के लिखे उक्त 3 ग्रंथों ही उपलब्ध हुए हैं। कुछ लोग इनके लिखे 3 और ग्रंथों का उल्लेख करें। इनके नाम है भूषण उल्लास भूषण हजारा। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी वीर रस कवि के रूप में। युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषय ग्रंथ अवश्य लिखा तथापि मूलतः वे ओजस्वी कवि ही हैं। उनकी भाषा ओजपूर्ण तो है ही किंतु वह अव्यवस्थित है। उनके कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों के प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि हैं। बिहारी लाल बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि। उनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सत्सई है जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी का देवस्थान 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी जिसका उपयोग उन्होंने अपने सत्सई में किया है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सत्सई में जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे। इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती अमरूक शतक आर्य सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे उस समय राजा जयसिंह बड़ी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज बोलकर महल के बाहर तक नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने अद्वार लिखकर उनके पास भिजवा दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही हौ सौ बंध्यो आगे कौन हवार। तो ही मैंने व्यंगाट को समझ के राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में संलग्न हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा ने उन्हें ऐसे ही सरल दोहे बनाने का निर्देश दिया था। प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें एक अशर्फी यानी स्वर्ण मुद्रा दी जाने लगी। बिहारी सत्सई मूल सिंगारा सोत्प्रत मुक्तक काव्य है जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक ही रत्न माना जाता है। बिहारी सत्सई की 50 टीकाएं लिखी गई हैं। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सत्सई में उपलब्ध है। मुक्तक में प्रबंध समान रस की धारा नहीं अपितु इसमें से तो रस के छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खुल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वर्णनस्थली हो तो मुक्तक एक चुना गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य के कसौटी का निर्धारण कर दिया तथा बिहारी सत्सई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। वे आगे पुनः कहते हैं इनवर्टेड कामा जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी भी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इन्वर्टेड काम बंद। बिहारी सत्सैया के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है, सत्सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखने में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी के रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभाव और हाव भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कभी नहीं कर सका। देव, कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था तथा यह इटावा के रहने वाला था। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अनेक राजा राजवाणों का आश्रय प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1767 ईस्वी के आसपास हुई। देव को कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जहाँ टिक कर अपने परिणामतः ये बराबर अपना आयुष्य बदलने को विवश हुए। देव ने प्रचुर मात्रा में ग्रंथों की रचना की जिनकी संख्या कुछ लोग 72 बताते किंतु अभी तक केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए जिनके नाम है पहला भाविलास। इस ग्रंथ में उन्होंने औरंगजेब के दो बड़े पुत्र आजम शाह को सुना था जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। दूसरा अष्टयाम यह ग्रंथ भी अजय शाह को सुनाया था। तीसरा भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर लिखा गया। चौथा कुशल विलास पंफू रियासत के राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखा गया। पाँचवा प्रेमचंद का राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए लिखी। छठा जाति विलास भिन्न भिन्न प्रांतों एवं जातियों की स्त्रियों का वर्णन। सातवां रस विलास राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा। आठवां राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। नवां देवशतक अध्यात्म विषयक ग्रंथ है। इसमें जीवन और जगत की असरसारता का चित्रण है। दसवां देवचरित कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य। ग्यारहवां शब्द रसायन लक्षण ग्रंथ तथा सर्वांग निरूपण रीति ग्रंथ है। बारहवां सुजान विनोद सुजान मणि के आश्रय में लिखा। तेरहवां सुख सागर तरंग रस नायिका वेद आदि संबंध कवित सभी का संग्रह। चौदहवां देव माया प्रपंच प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत ग्रंथ नाटक का पद्यानुवाद। पंद्रहवां प्रेम तरंग प्रेम के महात्म का वर्णन। देव एक समर्थ कवि में प्रतिभा संपन्न आचार्य के रूप में समादृत होते हैं। आचार्यत्व की उपेक्षा देव का कृतित्व अधिक सशक्त है। उनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार रहा है। उनकी रचनाकाल में कविताओं की चारुता और अर्थ वैभव का सुंदर सामंजस्य हुआ। विषय अनुकूल शब्द चयन अनुप्रासंगिकता के कारण की अभिव्यंजना शैली की प्रशंसनीय बन पड़ी है। कई कई शब्दों की अनावश्यक तोड़मोड़ों एवं व्याकरणिक अव्यवस्था के कारण उनकी कविता सरस भावपूर्ण एवं नेतागंधी बन पड़ी है। नायिका भेद का विवेचन में देव ने अत्यंत सूक्ष्म ढंग से किया। इस विवेचन पर भानुदत्त के रूप प्रश्नजलि का प्रभाव साफ झलकता है। अलंकार निरूपण में वे भामा एवं दंडी के ग्रंथों से प्रभावित हैं। देवरसवादी आचार्य थे तथा उनका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया भी है। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव उतने महत्वपूर्ण हैं जितने कवि के रूप में हैं। उनकी कवित्व शक्ति की तुलना कुछ विद्वानों ने बिहारी से करते हुए हिंदी क्षेत्र में एक विवाद खड़ा कर दिया है कि वे देव बड़े हैं या बिहारी। इस विषय में के पक्ष में अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। घनानंद घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा का श्रृंगारी कवि। उनका जन्म 1689 ईस्वी और मृत्यु नादिरशाह के आक्रमण के समय 1747 ईस्वी में हुआ। यह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति कायस्थ थे। ये सुजान नामक वैश्य का प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुछ चक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। जब बादशाह ने उन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि इस तरह नहीं गाएंगे। उनके यदि उनकी प्रेम का सुजान कहें तब गाएंगे। वैश्य बुलाएगी और तब घनानंद ने उनकी ओर मुँह करके और बादशाह की ओर पीट करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुए किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि उन्होंने इन्हें शहर से बाहर निकाल जाने का हुक्म दे दिया। तब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को हाथ उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर इन्हें वैराग उत्पन्न होगा और वृंदावन आकर नहीं मारकर संप्रदाय के वैष्णव हो गए। नादिरशाह के आक्रमण के समय हुई कत्तियाम में मारे गए। लोगों ने नादिरशाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन बादशाह का अमीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा माल होगा। सिपाही ने उसे घेर जा घेरा और उनसे जर 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 अर्थात धन 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 कहा तो उन्होंने शब्द को उलट कर रज 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 कहकर तीन मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला और उनकी मृत्यु हो गई। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ। जो कहीं भी कृष्णावाची है तो कहीं सुजान नामक उस विषय के लिए जो उनकी प्रियसी थी। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है, सुजान सागर विरह लीला लोकसार रस केली वल्ली और कृपा कांड। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त इनकी कवित्व सवियों फुटकर संग्रह भी मिलते हैं। इनमें से 150 लेकर 400 छंद संग्रहित। डॉक्टर नगेन्द्र केशव घनानंद के कुल उपलब्ध कविता संग्रहों की संख्या 752 है। पदों की संख्या 1057 तथा दोहे चौपाओं की संख्या 2354 है। घनानंद के विषय में अन्य उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं। पहला प्रेम मार्ग ऐसा प्रेम धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। दूसरा भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा और किसी कवि का नहीं। तीसरा घनानंद उनके लिए कवियों में है जो भाषा के लाक्षणिक पदावली की शक्ति से परिचित आचार्य हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनोटिकामा भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख नहीं को थी। इनोटिकामा बंद। चौथा घनानंद ने यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया तथापि इनका वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। उधर अनंत के वियोग वर्णन बिहारी की तरफ, बिहारी ताप की नाप जोक नहीं अपितु जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। पांचवा, ग्रहानंद अंतर्वृत्तियों के निरूपक कमी है, वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है, विरह वेदना में हृदय की पीड़ा छटपटाहट एवं कष्ट कितनी बढ़ जाती है इसका पता घनानंद की कविता सवियों प्रमुखता से चलता है। छठा, लाक्षणिकता मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग चित्रण की जो छठा घनानंद की भाषा में दिखाई पड़ती है वो बाद में आधुनिक काल की छावादी कविता में ही उपलब्ध होती है अन्यत्र नहीं। पद्माकर, रीतिकाल कवि में पद्माकर का नाम आदर्श लिया जाता है, बिहारी के बाद यह सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रीतिकाल के, इनकी जैसी लोकप्रियता बहुत कम कवियों को प्राप्त है। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट एक महान विद्वान कवि थे। पद्माकर का जन्म बांदा में 1753 ईस्वी में हुआ और 80 वर्ष की आयु पाकर 1633 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए, हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। इनकी वीरता पर मुद्दे उन्होंने पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचना की, यह वीर की फड़कती हुई रचना है। सितारा के महाराज रघुनाथ राव राघोबा ने इन्हें एक हाथी 1,00,000 रुपये और 10 गांव प्राप्त किए। तत्पश्चात पद्माकर जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के आए, उनके पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रखकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जगद्विनोद की रचना की। यहीं पर उन्होंने अलंकार ग्रंथ पद्माभरण की रचना की। राजा जगत सिंह के स्वर्गवास के बाद वे ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया के दरबार में भी रहे। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। बाद में वो ग्वालियर के बूंदी गए और वहाँ कुछ काल तक रहने के बाद बांदा आ गए। अंतिम समय में ये रोगग्रस्त थे, तभी इन्होंने प्रबोध 50 की रचना की। अंतिम समय निकट जानकर वे कानपुर के गंगा तट पर बसे रहने लगे और वहीं उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी की रचना की है। इस प्रकार पद्माकर के लिखे ग्रंथ निम्नमत हैं। पहला, हिम्मत बहादुर वीरस्पदान चरित काव्य। दूसरा, प्रताप सही वीरदावली चरित काव्य। तीसरा, कल्ली पचीसी कलयुग का वर्णन। चौथा, जगत विनोद श्रृंगारस का ग्रंथ। पांचवा, पद्माभरण अलंकार ग्रंथ। छठा, प्रबोध 50 वैराग्य निरूपण। सातवा, गंगा लहरी गंगा महात्म्य। जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। श्रृंगारस एवं नायक नायिका भेद का विशद विभूषण किया। काव्यांगों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कविता समय में है। इस ग्रंथ की रचना के लिए आधार सामग्री भानुदत्त के रसमंजरी केशव रसिक प्रिया और विश्वनाथ की सहायता दर्पण से ली गई है। उस ग्रंथ की विशेषता यह है कि लक्षण सुबोध तथा उदाहरण सरस है। पद्माकर की गणना अच्छे कवियों में की जाती है। उनकी रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। मधुर और स्वाभाविक कल्पना सजीव मूर्ति विधान और उपयुक्त शब्द चयन के कारण की कविता का भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों ही सशक्त बन पड़े हैं। भाषा के प्रवाहमयता एवं विषय की सरसता के कारण पद्माकर रीति काल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल के समय सीमा कब से कब तक निर्धारित किया? 1700 से 1900 संबंध। रीति काल का नामकरण कौन सा नहीं है? पूर्व मध्यकाल। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी? रीतिकाल। रीतिकाल के आचार्य विश्वनाथ शरद मिश्र ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। लक्षण ग्रंथों की रचना निर्माण करने वाली कवियों को क्या कहा जाता है? आचार्य। रीति निरूपण का अर्थ क्या होता है? काव्यांग निरूपण। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि। भूषण रीति मुक्त कवि नहीं है। रीतिकाल में वीरस की कविता करने वाले कवि भूषण, रीति सिद्ध कवि बिहारी, रीतिबद्ध कवि देव, भाषा भूषण कर रचिता जसवंत सिंह। रीतिकाल का कौन सा व्यक्ति चित्रण के लिए सुविख्यात है? सेनापति। ललित लीलाम की रचयिता का नाम मतिराम। अमीय हलाहल रस भरे स्याह श्वेत रतनार, यह पंक्ति किस कवि की है? रसलीन। बिहारी सत्सई किस कवि ने नहीं लिखी? घनानंद। कौन सा छंद कवि भूषण रचित नहीं है? छत्रप्रकाश। देव माया प्रपंच नाटक रचयिता कौन है? देव। छत्रप्रकाश किस कवि की कृति है? लाल कवि। नैन चाहे कहे मुस्काई लला फिर अयो खेलन हो रही, यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर। भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा भसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में? बिहारी। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार रहने का श्रेय किस कवि को मिला? पद्माकर। कौन सा कवि इटामा का निवासी माना जाता है? देव। रामचंद्रामरण अलंकार नामक ग्रंथ किस रचयिता कौन है? गोप। गंगाट का मुद्दी रचनाकार का नाम? देव प्रताप साहिब। तंत्र नारद कवित्र सरस रात राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी। कठिन काव्य का प्रति किस कवि को कहा जाता है? केशव। त्यो म्लेच्छ वंश पर श्री शिवराज है, पंक्ति किस रचयिता कवि की है? भूषण। रीतिमुख छंदाव स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? घनानंद। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत्त भूषण विनोन विराजयी कविता वनिता अमित, के दोहा किस कवि का? केशव। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? नायिका भेद ग्रंथ। इत आवत चली जात चली, छह, सातक, हाथ, यह पंक्ति किस कवि की अभिहार है? इनमें कौन सी विशेषता समान करती है कवियों की राष्ट्रीय भावना? वनन में, बागन में, बगरियो, वसंत है, पंक्ति किस ऋतुकालीन कवि के सेनापति? रणित, भृंग, घंटावली, झरित, दान, मधुनीर, किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया? वसंत ऋतु। इनका भाषा का लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक इसकी पूरी परख इन्हीं को थी? आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए उपयोग किया? घनानंद। इनका प्रेम मार्ग का ऐसा धीरपति को जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं, वह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अति सुधो स्नेह को मारक है, जहाँ नेक उससे अपन बांक नहीं, पंक्ति किस कवि की? घनानंद। यह प्रेम को पंत कराल महातरवर की धार पे धवनों है, यह पंक्ति किस रचयिता कौन है? बोधा। नंद में जो सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुनने करें, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? आलम। समाधि योजना। किस कवि को समाधि योजना का सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव। रसराज और ललित लला ग्रंथ रचयिता का नाम मतिराम। सिंधु तरियो इनको बनला तुम पै धनुरेख गई तरी, यह कवि किस पंक्ति किस कवि के? केशव। ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहन बार, ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किस कवि? भूषण। भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण। किस कवि के पाल के बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? भूषण। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी? 105। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सुह करे भौहन हंसें देन कहें नटी जाए, कौन सा रस है? श्रृंगार रस। भाषा के समाज शक्ति और कल्पना के समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? बिहारी। सर्वाधिक टीका किस पुस्तक में उपलब्ध है? बिहारी। सत्सई। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, यही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी। जहांगीर जयचंद्रिका रचयिता का नाम क्या है? केशव। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर। इश्कलता के रचनाकार का नाम बोधा। तुलसी गंगन धुओं भय सुकवियन के सरदार भिखारीदास। पद्माकर पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण। रीति मुक्त धारा में इनमें से कौन से किसी प्रमुखता में श्रृंगार रस रूपण की? रीतिकाल किस कवि ने श्रृंगार फिर भक्ति रस की रचनाएं लिखी है? पद्माकर। भाषाभूषण रचयिता का नाम क्या है? जसवंत सिंह। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्यों में किस प्रकार का मुक्तक है? बिहारी। सत्सई पर किसका प्रभाव? गीत गोविंद का। रीतिपत कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन सबसे अधिक आकर्षक, क्योंकि वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है।